वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय भाई हठात हमको कानों में गड़बड़ी हो गई, सर्दी जुकाम हठात मैं सुन नहीं पा रहा। अभी ये दिल्ली और कहाँ कहाँ से आदमी आए हैं, इसीलिए थोड़ा सा आना पड़ा। अभी कुछ नहीं बोलूँगा, पहले ये लोग कुछ बोलें और अंत में थोड़ा समय। इसलिए शुद्धा भक्ति क्या चीज़ है, किसे कहते हैं और कैसे उसमें हम लोग प्रवेश कर सकते हैं, महाप्रभु जी का उसमें क्या विचार है, इसके संबंध में शुभानंद जी कुछ बोलिए, इसके बाद में फिर रसानंद प्रभु जी और कुछ बोलेंगे और अंत में मैं कि शुभानंद जी और रसानंद जी ने रामानुज के संबंध में कुछ बताया, किंतु ये लोग और अच्छी तरह से पढ़ें, उल्टा का पुल्टा लगा देते हैं बिना पढ़े हुए, अंदाजीफिकेशन पर ढेल फेंकते हैं और लोगों के लिए तो अच्छा है ये नई नई बात सुनते हैं, किंतु उन लोगों को चाहिए कि और अध्ययन अच्छी तरह से कर करके, जिसको जब कहना है उल्टा पुल्टा नहीं सीधा से, जिससे कि वो ठीक रहे। बातें तो ठीक कही है किंतु उलट उलट करके कही है, इसलिए ये थोड़ा सा अच्छी तरह से और अध्ययन करें, सुने अच्छी तरह से, सुना है तो बहुत बार किंतु याद नहीं, गड़बड़ हो जाता है। खैर मैं दो एक बात बतलाता हूँ, रामानुजाचार्य जबकि गृहस्थ जीवन में थे, अभी संसार में छोड़ा था, उसी समय शैलपुण का नाम जो सुना आपने, जो मध्य उनके जमुनाचार्य के शिष्य थे, किंतु थे नीच जाति के, किंतु नीच जाति उनको मानने से अपराध होगा, जैसे हरिदास ठाकुर, रामानुज को बचपन से ही उन्होंने ही तैयार किया था, उनको सब शिक्षाएं दी थी वैष्णव धर्म की, और उनके संबंध में बतलाया था उनके गुरु जमुनाचार्य के संबंध में, वो किसी प्रकार से इनको उनको यहाँ ले जाना चाहते थे, क्योंकि बड़े मेधावी थे बचपन से ही, उनको वैष्णव मंत्र में कोई वैष्णव मंत्र दिया नारायण का, जो सांप्रदायिक मंत्र है, कहा कि ये किसी से मत कहना, योग्य व्यक्ति हो तो कहना, नहीं तो किसी से मत कहना, नहीं तो ये मंत्र निष्फल हो जाएगा। हम लोग भी कहते हैं कि अपना गुरु मंत्र किसी को नहीं बतलाना चाहिए, यदि बतलाएगा तो निष्फल हो जाएगा। जबकि वो दीक्षा ले लिए तो वो कुमार से आए और शहर के बीच में जहाँ पर कि लाखों आदमी आते जाते हैं, उसके ऊपर में खड़े हो गए, छत के ऊपर में, और कहने कि देखो सब लोग ध्यान से सुनो, हम तो जो तुमको बतला रहे हैं बहुत ही वेदों के गोपनीय चीज़ को बतला रहा हूँ, और तुम सब लोग जो मैं कहता हूँ उसी को तुम लोग फिर से उच्चारण करो, ओम नारायणाय नमः। बस उन लोगों ने भी किया, तीन बार कहलाया, कहा जी आप लोगों की सबकी दीक्षा होगी, ये मंत्र जपेंगे और आप लोग निश्चित रूप में भाव सागर को पार कर जाएंगे, नारायण की सेवा को प्राप्त कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। फिर लाखों आदमी आए, फिर उनको भी ये दिन भर उनका काम ही था, वो खाना पीना भूल करके यही कर रहे थे, उस समय कोई मेला इत्यादि था, उनके गुरु जी ने सुना यार ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है, इस मंत्र को बतला रहे हैं सबको, तो वो तो नरक में जाएगा, बतलाना नहीं चाहिए। तो गुरु जी आए और बोले जैसे उतर करके इधर आओ, उतर जाए उनके चरणों में गिरे, ये तुमको कहा था कि किसी को मत बतलाना और तुमने ये सब बतला दिया, हाँ गुरु जी हमने बतलाया, कुछ विचार किया, आपने कहा कि जो इस मंत्र को करेगा वो सबका उद्धार हो जाएगा, तो हमने सोचा, और यदि बतलाएगा जो उसका नरक हो, हमने सोचा जो नरक भले ही हमारा हो कोई भी बात नहीं, हम नरक में जाएंगे, किंतु करोड़ों करोड़ों लोग जो जिनको सुना रहा हूँ उनका तो कल्याण हो जाएगा, इसलिए हमने कहा। तो गुरु जी निरुत्तर हो गए, कहा जे तुम हमारा गुरु है। ऐसे ये रामानुजाचार्य जी बड़े दयालु, ऐसे ये थे कि जब वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, जिस समय कि वो आचार्य होकर के बैठे श्रीरंगम में, उनका शिष्य कुरेश था, वो अपना मामाऊ भाई भी लगता था और शिष्य भी था, बहुत विद्वान और साधक भी उच्च कोटि का था। तो चोल राजा ने रामानुज को पकड़ करके बुलवाया और जानबूझ करके एक शास्त्रार्थ की उसने षड्यंत्र किया, जो शास्त्रार्थ होगा उसको बुला लो, बस उस देश के जितने बड़े बड़े सभी पंडित थे उन सबको बुलाया और इनको भी बुलवाया। कुरेश जी ने कहा जी आप मत जाइए, आपके बदले में मैं जा रहा हूँ। वह कुरेश जी ने अपने गुरु जी का लाल कपड़ा, दंड, संन्यास सब ले लिया, वैसे पगड़ी बांध करके और उसके साथ में गए। वहाँ पर जाने पर शास्त्रार्थ में सबको हराया, किंतु वो तो बहुत नंबर में बहुत अधिक थे, उन्होंने ताली बजा करके इनको घोषित किया ये हार गए और उनकी आँख दोनों निकालने के बाद में उनको छोड़ दिया कुरेश का। रामानुजाचार्य तो चले गए, भाग गए वहाँ से, काशी के तरफ में आने लगे और उनके शिष्य कुरेश का निकाल लिया आँख दोनों। ये तो रामानुज समझ करके, ये रामानुज है ऐसा समझ करके उनकी आँख निकाल ली। कुछ दिनों के बाद में घूमता घूमता रोता फिरता, हमारे गुरुजी कहाँ मिलेंगे, वो गुरुजी को खोजता खोजता उधर ही आ रहा था। और रामानुजाचार्य उस गांव में थे, जब ही रामानुज जो सुना जी रामानुज इस गांव में है, तो वो आया और इनका दर्शन करने के लिए और फुट फुट करके रोने लगा। रामानुजाचार्य बोलते अरे ये तो कुरेश है, बस साथ ही साथ जब ही कुरेश आया मिलने के लिए त्यों ही उसके सिर पर हाथ रख दिया और उसकी दोनों आँखें कि जथा की जैसी तैसी की, ये गुरु है। और शिष्य भी ऐसे है जी, गुरु ने योग्य गुरु ने शिष्य को सब उपदेश दिए और योग्य शिष्य ने क्या किया, उसके लिए अपनी जान भी हथेली में लेकर के प्राण भी देने के लिए तैयार। और रामानुज ने क्या किया, उसकी आँख निकल गई या फिर उसको आँखें, ऐसे प्रतिभाशाली ये थे। और भी कितनी बातें हैं, आज रात हो गई है, हमारे लिए बोलना भी निषिद्ध है, इसलिए आज रामानुजाचार्य हम सब पर कृपा करें, जिससे कि हम लोग रामानुजाचार्य जैसे गुरु के हम लोग प्रति भक्त हो, कुरेश जैसे भक्त हो, ऐसे सिद्धांतविद हो, सर्वत्र वैष्णव धर्म का की ध्वजा पारा और भजन में हमारी निष्ठा हो रामानुज जी जैसे। गुरु जी की उन्होंने के सामने प्रतिज्ञा की, मैं इनके सामने संन्यास लेता हूँ, बस एक उंगली उनकी तीन ऐसे थी ऐसे, जब ही उन्होंने कहा संन्यास लूँगा तैसे एक खुल गई, दूसरा कहा वेदांत सूत्र का मैं भाष्य करूँगा वैष्णव भाष्य, बस ये दूसरी खुल गई, और तीसरी कहा वैष्णव धर्म का सर्वत्र प्रचार करूँगा, बस तीन खुल गई। रामानुज ने अपने गुरु जी से ही, गुरु जी से नहीं, गुरु जी के सामने रख करके संन्यास ले। कोई कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने अपने गुरु से या किसी से संन्यास नहीं लिया, तो रामानुज के इसको संन्यास कैसे मानते हैं, रामानुज ने तो स्वयं ही अपने आप लिया गुरु जी वहाँ पर, गुरु जी का पट विग्रह अथवा श्री अंग जिसमें वो अप्रकट हो गए हैं उनके सामने लिया, उन्होंने तो संन्यास दिया नहीं, मंत्र कान में दिया नहीं, कपड़ा दिया नहीं, दंड नहीं दिया और उनका संन्यास हो गया। तो प्रभुपाद रामानुज से कम है, रामानुज जो किया कार्य, इन्होंने यदि अपने गुरु जी का पट विग्रह रख करके और अपने उन्होंने संन्यास लिया, अरे मूल चीज होती है संन्यास नहीं, मूल चीज क्या होती है, दीक्षा, वैष्णव वैष्णवी दीक्षा, उन्होंने तो वैष्णवी दीक्षा हरिनाम और दीक्षा इत्यादि सब दिव्य ज्ञान पहले ले लिया है गौतम सोदास महाराज से, और फिर यदि उनकी चित्त जबकि उनके गुरु अप्रकट हो गए तो उन्हीं को रख करके और ले लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मध्वाचार्य ने भी ऐसा कहा किया है। सनातन गोस्वामी को बाबा जी वेश किसने दिया, कह सकता है कोई? ये कौन दिया? अपने लिया, पुराना कपड़ा चंद्रशेखर आचार्य का मांगा और उसको चीर करके डोर कोपिन बना लिया और एक ऊपर एक नीचे पहन लिया। महाप्रभु जी ने पहना है, मंत्र दिया कुछ? तो यदि उनका हो सकता है रूप गोस्वामी को कोई बाबा जी वेश दिया था, उनका नाम है बाबा जी रूप क्या श्री रूप बाबा जी नाम उनका है कि सनातन बाबा जी नाम है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नाम बाबा जी है कि जीव गोस्वामी का नाम बाबा जी है? ये बाबा जी प्रथा कब से चली, कब से चली, कब से? कोई इतिहास नहीं है, कोई इतिहास नहीं। ये सब बाबा जी असिद्ध है। ये जो सनातन गोस्वामी जी जी ने ले लिया, ये परमहंस वेश है। परमहंस वेश में कभी नंगा होगा, कभी लाल कपड़ा पहन लेगा, फिर उसको निकाल करके सिर में बांध लेगा, कभी सफेद कपड़ा ले लेगा। परमहंस कोई वेश नहीं होता है, परमहंस तो परमहंस होते हैं। ये वेश परमहंस का है। और यदि मंत्र के साथ में गुरु जी से लेते हैं तो वो संन्यास के रूप में हुआ। तो ये बाबा जी वेश कब किसने चलाया, इसका इतिहास क्या है, कौन है, ये सब असिद्ध हैं। हमारे गुरु जी कहते थे, तुम लोगों को जानने के लिए बतला रहा हूँ, गुरु जी कहते थे बाबा जी वेश असिद्ध है, ये विधवा का वेश है, कोई शुद्ध कहीं पर इसका प्रचलन नहीं है। बाबा जी वेश कौन दिया, किसको, इसका इतिहास क्या है, शुरुआत कैसे हुई, कोई शुरुआत नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तक, विश्वनाथ चक्रवर्ती उनका नाम है, बाबा जी नाम है उतना नहीं। इसी तरह से हम देखते हैं कि उस समय तक 250-300 वर्ष पहले तक ये कहीं नाम नहीं था। हमारे रूप सनातन जी ने देखा जे ये संन्यास वेश प्रारंभ से सतयुग से है और ये वेद उपनिषद का ये विचार है। किंतु महाप्रभु जी हमारे आदरणीय हैं, ये हमारे नित्यानंद जी आदरणीय हैं, स्वरूप दामोदर जी ये सन्यासी लोग हैं, श्रीरंगपुरी परमानंदपुरी
रामचंद्रपुरी
ये नौ मूल हैं भक्ति के, ये सभी सन्यासी थे। महाप्रभु सन्यासी, नित्यानंद प्रभु सन्यासी, कोई बाबा जी इसमें है, बाबा जी का कोई उल्लेख नहीं। ये हमारे प्रणम में है इसलिए इनका वेश हम नहीं लेंगे, लाल कपड़ा नहीं लेंगे, हम लाल कपड़े के अधिकारी नहीं हैं। दीनहीन होकर के पुराना कपड़ा मांग लिया और पहन लिया, बस इतना ही तक किया। ऐसे ही हमारे सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, इसके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्यामानंद जी, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, कोई बाबा जी हैं, श्रीनिवास बाबा जी है ना, क्या है, नरोत्तम बाबा जी है, कहीं तो नहीं उल्लेख। तो ये कहाँ से आया बाबा जी, ये असिद्ध है, हमारा संन्यास बल्कि सिद्ध है। इसके बाद में श्रील प्रभुपाद ने फिर से संन्यास प्रथा को चलाया। वो यदि है भी, जैसे गौर कृशोदास बाबा जी महाराज इत्यादि हुए, तो पीछे से दीनतावशता ऐसा किया गया। किंतु यह जो लाइन है बाबा जी की, ये संन्यास जैसे वर्णाश्रम धर्म की चीज़ है, वो परमहंस वेश नहीं है। और इसकी शुरुआत किसी वेद में नहीं लिखा है जो बाबा जी वेश ऐसे होता है, कहीं लिखा वेद में कि उपनिषद में कि कहीं किसी पुराण में, त्रिदंडी का तो उल्लेख है श्रीमद् भागवत में, किंतु बाबा जी का कहाँ उल्लेख है कहीं? तो ये चालनी चली है, चालनी, हाँ चालनी सुई की निंदा कर रही है, ये तुम्हारे अंदर में छेद है, किंतु अपना जो शास्त्र छेद है ये सब लोग नहीं देखते, विचार नहीं करते। जो होगा तो इनका उत्तर देगा, मैं एक प्रबंध लिखूंगा और सब जगह इसका प्रचार करूंगा जो बाबा जी असिद्ध, नाम ही असिद्ध है, ये कहीं बाबा जी नाम का कोई कुछ चीज है ही नहीं है, बल्कि हमारा संन्यास तो है। तो थोड़ा सा हिंट दिया, तुम लोग उस पर विचार करो और विचार करके कभी डरना मत, निर्भीक होकर के इस सत्य का चारों तरफ में प्रचार करना। ये प्रभुपाद का संन्यास लीगल है। यदि रामायण ले सकते हैं तो मत ये क्यों नहीं ले सकते प्रभुपाद? मध्वाचार्य ले सकते हैं, सनातन गोस्वामी स्वयं वो ऐसा वेश ले सकते हैं भजन के लिए दीनहीन होकर के, तो हमारे प्रभुपाद क्यों नहीं लेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर क्यों नहीं लेंगे? इसलिए ये सब चीज़ें सिद्ध हैं, हम लोगों की गुरु परंपरा भागवत परंपरा एकदम सिद्ध है, इसमें तनिक भी कोई दोष नहीं। वंशा कल्पतरुकश्च रामचंद्र विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश, यू कैन गो अप दोज हु वांट टू हियर एंड ही विल ट्रांसलेट ऑल दिस थिंग्स।